नियमसार कारण कार्य नियम पुस्तक पहिली लेक्चर नंबर 15 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम जरा ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वैच्छायाणम् नमो लोए सौवसाहूणम् नमिऊणजिनम् वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावम् वोच्छामि नियमसारम् केवली सुद केवली भणिदम्। आचार्य कुंकुं जी ने इस नियमसार ग्रंथ की रचना की है और उस पर पद्म प्रभु मलधारी देव मुनियों की जो टीका है तत्वार्थ क्या नाम है इसका तात्पर्य वृत्ति और गुरुदेव श्री के उस पर प्रवचन हुए हैं। इसका नाम है कारण कार्य नियम। ये पहली पुस्तक के पृष्ठ संख्या 100 पर हम आ गए 100। यहाँ नीचे से जो दूसरा पैराग्राफ है वहाँ से पढ़ेंगे अभी। हाँ, वड़ी पवित्रता ने, वहाँ से पढ़ते हैं। वड़ी पवित्रता ने अने पुण्य ने एवो संबंध होय छे, अर्थात घाती कर्मोना अभाव ने अने बाकी रहेला अघाती कर्मों ने एवो सहज संबंध होय छे के वीतराग सर्वज्ञ ने ते बाकी रहेला अघाती कर्मोना फलरूप परम अवतारिक शरीर में जरा रोग अने परसेवो होता नथी। ने ये जो बाकी कर्म रहे हैं उसमें तो ये सहज रूप से बात बन जाती है। वड़ी केवली भगवान ने भवांतर में उत्पत्तिना निमित्त भूत शुभाशुभ भावो नहीं हुवाती तेमने जन्म होतो नथी। यहाँ तो मृत्यु लिया था, यहाँ जन्म लिया है। यहाँ पर अने जे देह वियोग पछी भवांतर प्राप्ति रूप जन्म थतो नथी ते देह वियोग ने मरण कहवातु नथी। इसमें जन्म और मरण दोनों इकट्ठा ले लिया, यानी उनका जो देह वियोग होता है उसके पास दूसरा जन्म नहीं मिलता, इसलिए उसको उनके देह वियोग को मरण नहीं कहते। यही अभी मैं विचार कर रही थी। देखो गाथा जो निकालना, संस्कृत और प्राकृत में मृत्यु लिया है वहां पर, संस्कृत देखो, और उसका गुजराती जन्म लिया है, उसमें मृत्यु की बात लिखी नहीं है। यानी एक जगह मृत्यु लिया है, एक जगह जन्म लिया है ना। मैंने बोला ये क्यों ऐसा, उस पर ही मेरा विचार अभी चल रहा था, हम दोनों बोल रहे थे, तभी ये क्लियर हो गया यहाँ पर ही। यानी वो फिर दोबारा जन्म नहीं धारण करते, इसलिए उनके देह वियोग को मरण भी नहीं कहते। वैसे हम जो 18 दोष हमने याद किए थे रत्नगणेश शावकाचार में, तो उसमें जन्मांतक, जन्म और अंतक दोनों लिए थे, जन्म और मरण दोनों लिए थे। जन्म, हाँ जन्म लास्ट में लिया, जन्म उद्वेगो, हाँ दोनों लिया है। मग संस्कृत ये गुजराती में क्यों नहीं लिया दोनों, देखो ना उसमें कितने लिया, भय रोष राग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 ही, अच्छा आदि में डाल दिया, 15 ही लिया और बाकी आदि में ले लिया उन्होंने, आदि ले लिया, आदि में बाकी सब, विस्मय भी नहीं लिया ना उन्होंने। हाँ ठीक है, उन्होंने आदि करके छोड़ दिया। अब यहाँ हम पढ़ते हैं, वड़ी केवड़ी भगवान ने ये हो गया देह वियोग ने वरण के वर्तन के आ रीते वीतराग सर्वज्ञ अढार दोष रहित छे। एज रीते अन्य शास्त्र में गाथा द्वारा कहूं छे के क्या गाथा क्या है वो उसमें होगी ना संस्कृत में तथा च उक्तम पेज नंबर 98 पढ़ेंगे फिर उसका गाथा देखेंगे मिला 98 पेज पर संस्कृत के जो पहले पैराग्राफ के नीचे तथा च उक्तम सोधम मो जत्थ दया सोवितवो विषयनिग्ग हो जत्थ दस अठ दोष रही हो सो देवो नथि संदेहो। कहते ते धर्म छे जहाँ दया छे 101 पेज पर उसका अर्थ है ते तप छे जहाँ विषयोनो निग्रह छे અને તે દેવ છે જે 18 દોષ રહિત છે આ બાબતમાં સંશય નથી। પૃષ્ઠ સંખ્યા 101
ફિરસે પડ ગાથા
101 પર જો ગાથા તમને દેખાવ ઓર વો ગાથા 98 પેજ પર થી વૈસે હી આગે કહેતે વડી શ્રી વિદ્યાનંદ સ્વામીએ તીસરી લાઈન ને ઉપર સે શ્લોક દ્વારા કહ્યું છે કે એ શ્લોક ભી 98 પેજ પર લિખા હુઆ હૈ तथा च उक्तम श्री विद्यानंद स्वामी भी ही। उसको वहां से पढ़ेंगे अभिमत फल सिद्धेरभ्युपाय बोधा सच भवति सुशास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिराप्तात् इति भवति सपूज्यस्तत्प्रसादात् प्रबुद्धै नहि कृतम् उपकारं साधवो विस्मरन्ति। प्रबुद्ध ही प्रबुद्ध ही होने चाहिए मेरे ख्याल से नियम सार इधर है नहीं वो वाला कौन सा है अभी कौन सा हो गया गाथा अभी मत फल बुद्ध है हाँ प्रबुद्ध ही है तीसरी लाइन प्रबुद्ध लिखा है ना वो प्रबुद्ध चाहिए। हाँ पढ़ते समय में प्र बताया परंतु श्लोक की तीसरी लाइन लास्ट में प्रसादात प्रबुद्ध ही लिखा है ना वो त के बाद प्र चाहिए वो तत् प्रबुद्ध प्र प्र उसको एक लाइन करना दांडी निकालना समझ जिसे प्रबुद्ध कहते हैं प्रसाद। अब उसका अर्थ देखते हैं श्लोक का इष्ट फलनी सिद्धि नो पेज नंबर 101 श्लोकार्थ इष्ट फलनी सिद्धि नो उपाय सुबोध छे सुबोध सुबोध ने वो सम्यक ज्ञान अर्थात मुक्ति की प्राप्ति नो उपाय सम्यक ज्ञान छे सुबोध सुशास्त्र थी थाय छे सुशास्त्र नी उत्पत्ति आप्तती थाय छे माटे तेमना प्रसाद ने लीधे आप्त पुरुष बुद्धजनों वड़े पूजवा योग्य छे क्योंकि ये जो हमें सुशास्त्र की उत्पत्ति आप्तों के द्वारा हमें ये उपदेश मूल उपदेशक वे है इसलिए तो बुद्धजने समय दृष्टि पूजवा योग्य छे अर्थात मुक्ति सर्वज्ञ देवनी कृपानु फल होवाथी सर्वज्ञ देव ज्ञानियों वड़े पूजनीय छे बुद्धजनों वड़े ने ज्ञानियों वड़े केम के करेला उपकार ने साधु पुरुषों एने सज्जनों भूलता नथी वो हमने पढ़ा ना नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती साधुओं ने वो मुनिराज नहीं लेना हाँ साधु पुरुष ने सज्जनों को कहते हैं। अब यहाँ गाथा छह ऊपर प्रवचन पढ़ेंगे गाथा नहीं पढ़ते उसके नीचे से शुरू करते आ 18 दोषना स्वरूप नु कथन छे जो वितरागना मार्ग में परमेश्वर अरिहंत केवा होय 18 दोष रहित होय एनी व्याख्या કોઈ પણ આ માયલો એક દોષ સહિત હોય એ અરિહંત છે નહીં. માયલો એને ઇનમેં સે એક ભી દોષ હો તો વો અરિહંત નહીં હો સકતે, વો દેવ નહીં કહેલાતે. આ 18 દોષના સ્વરૂપનું કથન છે. ટીકાથી શરૂ કરીએ. આશાતા વેદની સંબંધી તીવ્ર અથવા મંદ ક્લેશની કરનારી એક ક્ષુધા આશાતા વેદની સંબંધી તીવ્ર મંદ ક્લેશની કરનારી તે ક્ષુધા છે. આ વ્યાખ્યા વિશિષ્ટ એટલે ખાસ પ્રકારના આશાતા વેદનીય કર્મના નિમિત્તે. આશાતા વેદની કે ભી કિતને ભેદ હોગે કે નહીં હોગે, અલગ અલગ ફલ લેને વાલે હે ના. કહેને કે લીએ હમ સાતા અસાતા દો ભેદ કરતે હૈ, પરંતુ હમને દેખે કર્મો કે અસંખ્યાત લોક પ્રમાણ ભેદ હૈ, તો ઇનમે ભી કિતને હી ભેદ હોગે. ઇસલિયે કહેતે વિશિષ્ટ ખાસ પ્રકારના અસાતા વેદનીય કર્મના નિમિત્તે થતી જે વિશિષ્ટ શરીર અવસ્થા જિસકો હમ ભૂખ કહેતે હૈ, શરીરની દશા અંદર થાય ને ક્ષુધા, એ શરીરની દશા છે અંદર. और उस पर लक्ष्य जाने पर यहाँ मोहनीय कर्म है. हाँ, वहाँ वो खाने की इच्छा होती है. इच्छा तो खाने की हुई, पर भूख ये इच्छा नहीं है, भूख ये शरीर की अवस्था हुई. पेज नंबर 101 फिर से देखो. शरीर की दशा अंदर थाय छे ने, नीचे का पैराग्राफ चौथी लाइन. क्षुधा ये शरीर की दशा छे अंदर, तेना ऊपर लक्ष्य जाइने મોહનીય કર્મના નિમિત્તે થતું જે ખાવાની ઈચ્છારૂપ દુઃખ તે ક્ષુધા છે. એ દુઃખરૂપ ભાવ સમજાનું કાંઈ. ભગવાનને ભૂખ લાગે, આહાર લાવે, રોગ થાય, દવા લાવે, ભગવાનને હોતું નથી. લ્યો આ પહેલી ભૂલ. આ ગુજરાતી મેં ભૂલ રસ્વ લખાય છે, દીર્ઘ હોના ચાહી ને. ભૂખ ભી દીર્ઘ હોના ચાહીએ ઓર ભૂલ ભી દીર્ઘ હોના ચાહીએ. કલ સે મેને પઢા, કલ ભી વો એસા રસ્વ આયા થા, મેં કુછ બોલી નહીં. ગયા કહી તો ગયા, અભી તો ઠીક કર લો ઇસકો. એ ભૂખ હૈ ના, વો ભી દીર્ઘ લિખના. ભૂખ લાગે ને, ભૂખ લાગે. ઓર યે ભૂલ, યે ભી દીર્ઘ ચાહીએ. તે ભગવાનને ભૂખ લાગે, આહાર લાવે, રોગ થાય, દવા લાવે, ભગવાનને હોતું નથી. લ્યો આ પહેલી ભૂલ. શું મોહનભાઈ, ભગવાનને રોગ થયો, આહાર લાવ્યા, દવા લાવ્યા, ખોટું ચિતર્યું છે. એ શાસ્ત્ર પણ સાચા નહીં અને એના કહેલા ભગવાન સાચા નહીં, એમ વાત છે. ભારે વાત આકરી પડે. એને આશાતા વિજ્ઞાનનો ઉદય છે ને એમ કહે છે, એમ કહે છે. તેથી આ વ્યાખ્યા કરી. એની ક્ષુધાને એમાં ખાવાની ઈચ્છા થાય તો ક્ષુધા કહેવામાં આવે છે. એને ઈચ્છા બિચ્છા છે નહીં. પરમેશ્વર જ્યાં અનંત આનંદ અતિન્દ્રિય આનંદના પૂરા અનુભવ પ્રગટ થયા, એને એવી વેદનાનો ઉદય હોઈ શકે જ નહીં. और यहाँ तो नहीं लिखा है, परंतु असाता वेदनीय की जो ये साताव या असाता उनकी उदीर्णा नामक जो कर्म की अवस्था है छठे गुण स्थान तक ही होती है, ऊपर होती ही नहीं. तो उनके ये ना क्षुधा होगी ना तृषा होगी. उदय है, उदीर्णा नहीं है. उदीर्णा का अर्थ अलग होता है. उदीर्ण यानी वो अधिक मात्रा में, वो तो ऊपर के नीचे को मैसे परमाणु उदय में आकर खिर जाना, જીસકો તીવ્ર ઉદય ભી કહેતે હૈ. એસા ઉદય ઉદીર્ણા ઇસમે નહીં હોતી. સાતવે કે એની છઠ્ઠે કે આગે હોતી નહીં ઉદીર્ણા. ઓર ઉદીર્ણા હો તો હી વો રોગ ક્ષુધા તૃષા વગેરે હો સકતે હૈ.
યહાં બચ્ચોં કો ચલો ખાના ખાને કો, ચલો ખાના ખાને કો, ચલો એસા કહેંગે નહીં. અભી હમકો ભૂખ નહીં, અભી હમકો ભૂખ નહીં. ઓર એક દો પાંચ મિનિટ જાને કે મમ્મી મને ભૂખ લાગી, वो ऐसा जो बोलते तो उनके ये असाता वेदनी की उदीर्ण हुई और उसमें मोहनी जुड़ गया तो उसको भूख लगी।
भूख लगी तो ठीक है, मन खाने की इच्छा होना वो उसके साथ आ गए।
अभी उसके साथ यहाँ जो हम केवली भगवान से तुलना करते हैं तो उनको तो असाता वेदनी की उदीर्ण होगी नहीं, तो यानी ऐसा। और मोहनी कर्म तो है नहीं, दसवें गुण स्थान में ही खत्म हो गया, तो फिर उनको भूख कैसा लगेगी?
किसको? उदय है, चौदवे तक है उदय। उदय है परंतु उदीर्णा नहीं है। उदीर्णा ना साता की है ना असाता की है, वो छठे गुण स्थान तक ही उसकी उदीर्णा की विच्छित्ति हुई है। जैसे हम उदय की विच्छित्ति कहते हैं ना, वैसे उदीर्णा की भी विच्छित्ति होती है आयु की और वेदनीय की। छठे तक ही उदीर्णा है, उसके ऊपर उदीर्णा नहीं है।
असाता का उदय, असाता का उदय आप बोल रहे हैं ना, वो तो पूरे समुद्र में एक बूंद जैसा है।
हाँ, या नहीं के बराबर है, परंतु परमाणु है उस रूप में, उसका उदय है। अपनी सुबह बात चली ना, और वो भी परिवर्तित उदय बताया तेरवे को, यानी वहां पर भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में साता असाता का उदय पलटता है। पर असाता का डेट हाँ देखो देखो, यानी ये जो कहते ना, वो किसी ने आहार लाके दिया और उन्होंने आहार लिया, वो तो बात होती ही नहीं। ये सब जिसको गुरुदेव की भाषा में गप है, खोटी रचना कर दी है। इन्हें परिणाम कैसे हो गए कि ऐसे जो सत्य प्ररूपना चली आ रही थी उसके विरुद्ध ऐसी कोई प्ररूपना लेकर वो शास्त्र उसके तैयार किए, काल्पनिक जो है, तो यानी कितने जिसको कहेंगे ना तीव्र कषाय होगी, कितना तीव्र मिथ्यात्व होगा कि आने वाली पूरी पीढ़ियों को ये खोटा उपदेश देके, और वो जैन का है, सर्वज्ञ का उपदेश है, इसलिए उसको फॉलो करते हैं, उसको सच्चा आगम मानते हैं। कोई कहते ना उसमें से हम सच्ची बातें गिन लेंगे, तो टंडमल जी साहब ने लिखा है जो खोटा व्यापारी होता है वो तो कुछ सच्चे मोती दिखाता है, कुछ झूठे उसमें मिला देता है, यानी उसका पूरा ही खोटा है। तो जहाँ जिस आगम में थोड़ी भी बातें मिलावट है, वो पूरी जो कथन है उसके, उसमें से एक भी बात उसमें सही नहीं ग्रहण करेंगे हम उसको, क्योंकि जवाबदारी ना। मोक्ष जैसा हमें पुरुषार्थ चाहिए, मोक्ष जैसा फल चाहिए उत्तम, तो उसके लिए उसका कारण भी वैसा ही होना चाहिए। जो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जो उपदेशित मूल प्ररूपणा मिली है हमको, वही सत्य है, और उसी को हमको ऐसा ही ऐसा निश्चित अपने परीक्षा द्वारा हमको नक्की करना है। यानी वो खोटे हम सच्चे इसके लिए नहीं, हमें अपना कल्याण करना है इसलिए। तो कहते 102 पेज पर, एने एवी वेदना नो उदय हो ही शके नहीं, एने आहार लावो अने आहार करवो ये बात हो ही शके नहीं। शुधानी व्याख्या करी श्रीमदे पाछळ शुधानी व्याख्या लीधी छे, 18 दोष एमना पुस्तक छे, रत्नकरण शावकाचार्यमां आ दोष लीधा छे, त्यारे लोको एम कहे के ए तो अनुवाद कर्यो छे। मुमुक्षु कहे ते खरू लाग्यु तेथी लीधुं छे ने? छे, भगवान तो आवा होय, भगवान ने वळी आहार होय ने पाणी होय, समझाणुं काई? जीवनभाई शुं कीधुं आ? आहार न होय, शास्त्रमां लख्युं छे, गप्पा मार्या छे। न्या तो बधा प्रतिक्रमण ने सामायिक करता हता। उत्तर, 1000 वर्षे 33,000 वर्ष पंडित जी, वो किसी ने बताया होगा देवों में आहार नहीं होता है, अने भगवान ने दररोज आहार, यानी सर्वार्थ। देखो देवों में ऐसा नियम है, जितने सागर वर्षों की आयु है उतने 1000 वर्षों के बाद उनको भूख लगती है, और फिर कंठ से अमृत झरता है तो उनके क्षुधा यानी वो तो मिट जाती है। तो देवों के भी ऐसा, और भगवान को रोज आहार होगा ये कह रहे। क्या कहते हैं? 1000 वर्षे 33,000 वर्ष पंडित जी, अने भगवान ने दररोज आहार, ये बात ज विपरीत है। સમજાનું કાંઈ. આમાં લખે છે 33,000 વર્ષે આહારની ઈચ્છા ઉપજે, એ તો ગોમરસારમાં આતી બાતી, ગોમરસાર મેં આતી, ઇસમે ત્રિલોકસાર મેં ભી આતી. ભગવાન હોને કે બાદ નહીં, નહીં કેવલ જ્ઞાની કો આહારી નહીં હોતા ના, યહી તો ચલ રહી બાત. કેવલ જ્ઞાની કો આહાર હોતા હૈ નહીં, છઠ્ઠે ગુણસ્થાન કે ઉપર ભૂખી નહીં લગતી હૈ, એ પ્રવૃત્તિ રૂપ. મુનિ અવસ્થામાં તો આહાર હોય છે, પણ કેવલ જ્ઞાન હોને કે બાદ બિલકુલ નહીં. એસા વો લિખતે હૈ, માનતે ભી હૈ, ઉનકે શાસ્ત્ર મેં લિખા હૈ એસા. વો બાત ખોટી વહી તો બતા રહે, ક્યોંકિ ગુરુદેવ કે સામને સુનને વાલે તો બહુત ઉસ સંપ્રદાય મેં સે આયે હુએ થે, જિન્હોને પહેલી માન્યતા રખી હૈ, કિતને ઉને એસે માની હૈ, ઉનકે લિયે ખાસ ઉસ બાત પર ગૌર કર રહે. જો દિગંબર મેં જન્મે હૈ, દિગંબર કી શાસ્ત્ર સુને, ઉનકો એસી કોઈ માન્યતા હી નહીં હૈ, યે તો કેવલાહાર હોતા હૈ, તો બાત હમને પહેલે ગુરુદેવ કે મુખ સે સુની કે એસા ભી માનને વાલે કોઈ હૈ. ખ્યાલ મેં આઈ ના, યે બાત તો હમને કભી સુની નહીં થી. સ્ત્રી કો કેવલ જ્ઞાન હોતા હૈ કભી સુના હી નહીં થા, માનતે ભી નહીં થે. યે તો યે બાત બાદ મેં ખ્યાલ મેં આઈ કે યે બારંબાર ઉસ પર ક્યું ગૌર કરતે, કે ક્યું વો ઉસ સંપ્રદાય મેં સે આયે થે એક બાર, ઓર ઉનકે સાથ હજારો લાખો લોગ દિગંબર સંપ્રદાય મેં આ ગયે, ઉનકે કારણ વો ટર્ન હો ગયે. પરંતુ કુછ તો બાતે પહેલી જો સુની હુઈ વો તો રહેતી હૈ ના મન મેં, હર એક બાત કા ખુલાસા હોના ચાહીએ, ઇસલિયે વો યે બાત બતાતે બારંબાર. યહાં લિખતે હૈ 33,000 વર્ષે આહારની ઈચ્છા ઉપજે, યે દેવો કી બાત હૈ, કૌન સે સર્વા સિદ્ધિ વાલે, જો 33 સાગર કી આયુ વાલે, અમૃતનો ઓડકાર કંઠમાંથી આવે એવા તો દેવ હોય. આ બાહ્યના દેવ દેવાધિદેવ, એ દેવોંકી ભી દેવ, એ તીર્થંકર હૈ. વળી આહારને ક્ષુધાને રોગ બિલકુલ તત્વથી વિરુદ્ધ છે, ઉનકો રોગ ભી કહેતે ના, એ દસ્ત હુએ ઓર ક્યા ક્યા હુઆ પેચેસ હુએ, ઉસકી દવા દી, કૈસી હૈ સભી ભૂલ ભરી બાતે. હા, અનંત સુખ વાલે હૈ, વ્યવહાર શ્રદ્ધાથી પણ ભ્રષ્ટ છે, એને ઉનકો દેવ કી વ્યવહાર શ્રદ્ધા ભી નહીં. બાહ્ય મેં કૈસા દેવ કા સ્વરૂપ હોતા યે ભી પતા નહીં, અંતરંગ કી તો પતા હી નહીં હોગા, તેને વ્યવહાર શ્રદ્ધા પણ હોતી નથી એમ કહે છે. એને તો ગૃહિત મિથ્યાત્વ હૈ, દેવ મેં એસી માન્યતા કરના એ તો બહુત બડા મિથ્યાત્વ હૈ. શું થાય, સંપ્રદાય બાંધીને બેસે ને એથી ઊંધું કરે, એટલે કંઈ ખાતામાં ખતવાઈ જાય. હું મુક્ષુ પૂછતી તો આવું લખવાનો હેતુ શું હશે, એસી ઇતની ગલત પ્રરૂપના ક્યું લિખી હોગી. ઉત્તર, પણ આ સંપ્રદાય ચલાવવો, જગતને સારું લાગે, સ્ત્રીનો મોક્ષ થાય, બધાને ભેગા કરવા, ક્યાં કહેતે કે ચલો અમારે યહાં સ્ત્રી કો ભી મોક્ષ હૈ, ચલો તો લોગ ભાગેંગે કે નહીં, અરે યહાં તો મોક્ષ હૈ. હા, ગૃહસ્થ કો ભી કેવલ જ્ઞાન હોતા હૈ, અરે ક્યાં ક્યાં ક્યાં, હાથી કે હોદે પર બેઠે બેઠે ભી ઉનકો, હા યે કૈસી બાત હોતી હૈ, કોઈ દયા હી પાલને સે કેવલ જ્ઞાન હો જાતા હૈ કિસી કો, યે સબ જય કહે ગપ હૈ. મોક્ષ કહે 15 ભેદે સિદ્ધ થાય, 15 ભેદ સિદ્ધ થાય બિલકુલ ન થાય. એક આત્મા અપરિગ્રહી સ્વરૂપ જ્યાં અંદર પૂર્ણ પ્રગટ્યું, એને આહાર કેવા, ક્ષુધા કેવી, તૃષા કેવી, કહો સમજાણું કાંઈ. બીજાના ભગવાન તો આહાર કરે, પાણી લે, શું કહેવાય ઓલા જીવન મુરારી આવે છે ને, બિલકુલ બધું એ પરમેશ્વર જ નહીં. પરમેશ્વરને આહાર હોય નહીં, અને એને ખોરાકને આમંત્રણ આપે એમ હોય નહીં. વો સબ ભોગ લગાતે હૈ ના સારા, એ ભગવાન કા સ્વરૂપ નહીં હૈ, એ તો સાધારણ વાત છે કહે છે સમજાણું. અને એવી ક્ષુધા તૃષા લાગે, એવી આશાતાનો રસ રહી ગયો, તો એનો અર્થ એ કે એની પવિત્રતાની પરિણતિથી એનો રસ મંદ ન પડ્યો. ક્યાં કહા, રસ એને અનુભાગ, તો આશાતા કા રસ એસા રહી ગયા હૈ, એને અનુભાગ એસા રહે કે ક્ષુધા લગ જાય, ऐसा नहीं होता है। जब से समय दर्शन हुआ है उसके पहले से ही अशुभ कर्मों का अनुभाग घटते चला जाता है। अब श्रेणी चढ़ी वहां तो कितना अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा घटा है, नहीं के बराबर रह गया है। प्रति समय अनंत गुणा घटना का अर्थ समझते हैं कितना, कितने एक एक अंतर्मूर्त में कितने असंख्यात समय होते हैं, तो उनके तो नहीं के बराबर है। और वहाँ साता का बंध हो रहा है, कितने असाता के परमाणु साता रूप हो गए और कितने का ही रस अत्यंत मंद हो गया है। तो कहते ऐसा असाता का रस ही नहीं रहा कि क्षुधा और तृषा लग जाए। उसका अर्थ क्या है, इनकी इतनी पवित्रता है फिर भी असाता का रस मंद नहीं हुआ, ये कैसी बात हो सकती है। हम जानू पहलो दोष ही क्षुधा न होए, उनका तो दोष नहीं है परंतु उनको क्षुधा मानना यह हमारा महादोष है। नहीं समझे, भगवान में तो ये दोष होते नहीं है और भगवान को इन दोषों सहित मानना ये महान मिथ्यात्व है, बहुत बड़ा, जिसको हम गृहित मिथ्यात्व कहेंगे। जब तक ये बाह्य श्रद्धा भी नहीं सुधरी तब तक तो आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं, समय दर्शन तो बहुत दूर की बात है। हाँ, आपका कहना है श्रीमद जी ने श्वेतांबर के लिए मना नहीं किया क्योंकि उन्होंने शुरुआत में श्वेतांबर के शास्त्र पढ़े थे, बाद में दिगंबर पढ़े थे तो उन्होंने कहा गोमटसार पढ़ना चाहिए, ये सारी लिस्ट बताई उन्होंने, परंतु उन्होंने कुछ शास्त्र श्वेतांबर के भी रख दिए कि उसको भी बिल्कुल उसकी मान्यता बिना समय दर्शन ही नहीं हो सकता, ये नक्की है। यानी अन्य कोई मान्यता के साथ, मान्यता ही पहले में पहले सुधरेगी तो मान्यता ही सुधरे, वहीं से तो शुरुआत होता है। तो समय दृष्टि अगर मानते हैं और मान्यता खुटिए से मानेंगे तो पूरा ही उल्टा पुल्टा सिद्ध हो जाएगा। आगे देखते देखो, असाता वेदनी संबंधी तीव्र तीव्रतर यानी अधिक तीव्र वधारे तीव्र मंद अथवा मंदतर एम चार भेद पड़िया। ओलामा तीव्र ने मंद बे लीधा था किसमें, क्षुधा में। तृषाना भेद छे ने घना, केवी तृषा होई छे। एक श्वेतांबर साधु हतो भावनगर थी निकले, तमारे नहीं जाड नहीं बावल एमा बिचारानी तृषा लागी, मरी गयो। छ गाव 12 माइल अमे चाल्या छे, गावे ने कोस काई नहीं, झाड नहीं बावल नहीं, आम दरियो आम घांगली आघे, एकलू झाड बावल काई न मळे, एकलो खार, एमा बिचाराने तृषा लागी हशे। मुमुक्षु ने कुछ कहा है उत्तर, पण रस्ता में पानी क्या मळे, रस्ता में खाली होए, रस्ता में भरे नहीं, रस्तो खाली पानी नहीं, समझाणो काई। असाता वेदनीय संबंधी तीव्र कषाय तीव्रतर वधारे तीव्र गळू चोंटी जाए मंद अथवा मंदतर, पाछू एम लीधु थोड़ी पण नहीं अने मंदतर एटली पीड़ाती एटले थोड़ी। विशिष्ट असाता वेदनीय कर्मना निमित्ते थती जे विशिष्ट शरीर अवस्था ए शरीरनी दशा छे, ए बधी जड़नी दशा छे, एवो असातानो उदय तीर्थंकर ने होई शके नहीं। એવો ઉદય કે જે ક્ષુધા લાગે કે તૃષા લાગે, અને એ શરીર અવસ્થા તેના ઉપર લક્ષ્ય જઈને મોહનીય કર્મના નિમિત્તે થતું જે પીવાની ઈચ્છારૂપ દુઃખ તે તૃષા છે। દેખો ઉનકે તો કિતને અભી કિસી કો તો અર્લીએસ્ટ કેવલ જ્ઞાન કબ હો સકતા હૈ, 8વે સાલ કે બાદ કુછ અંતર્મૂર્ત મેં ઓર કરોડ પૂર્વ કી આયુ હોગી, तो इतने काल तक ना आहार है ना पानी है ना कुछ है, तो उनके तो बिल्कुल परम औदारिक शरीर है, ना उनके भूख लगती है ना तृषा लगती है ना बुढ़ापा आता है ना कुछ रोग होते हैं उनके, ये तो केवली का स्वरूप है। और शरीर की ये जो तृषा रूप अवस्था है दशा शरीर की है, और उसका लक्ष्य करके मोहनी के निमित्त से पानी पीने की इच्छा होती है, ये इच्छा है वो दुख है, और उस दुख को यहाँ तृषा कहा। पूर्ण जा अतीन्द्रिय आनंद अमृतना दरिया उछड़ा छे, जहाँ समय दर्शन में पण अतीन्द्रिय आनंद नो स्वाद आवे, त्यारे केवड़ी परमात्मा ने तो अतीन्द्रिय आनंद ना दरिया उछड़ी गया छे। बालचंद जी शुं छे तमारा संप्रदाय में? ये छे पूर्वनी बात छे ने, तमारी संप्रदाय में ये छे के कह रहे पूर्व में हतु ने पिताजी ने हतु के नहीं? आहा हा, तृषा भगवान ने होय नहीं, पानी लई आवो अने पानी पीवे एवी इच्छा होय नहीं, एवी शरीरनी अवस्था पण एने होय नहीं। शरीरनी अवस्था एवी न होय एम कहे छे भाई, शरीरनी अवस्था पण एवी न होय, इच्छा तो न होय पण शरीरनी अवस्था एवी न होय, देखो ऐसा भी आना है ना कि समो शरण में जाने वालों को भी वहाँ भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, और उनको स्वयं को हो जाएगी। समो शरण में बैठने वालों तभी उस काल में नहीं होते उनके कुछ। मुमुक्षु परम औदारिक उत्तर परम औदारिक छे। मुझे एक बात याद आ गई अभी, वो बोलने जैसी नहीं है यहाँ पर। मायामी में गए थे तो वहाँ के बहन ने बोला कि वो भगवान को लड्डू क्यों कहते हैं, ऐसा हमने वहाँ आने वाले किसी को पूछा। हाँ वो पंडित जी का लड़का था, वो भी प्रवचन देता था। हाँ क्यों चढ़े? तो कहते कि वो जो सारे वहाँ लोग आते थे सुनने के लिए, तभी अपना अपना कुछ खाना भोजन वगैरह लेके आते थे, अब भगवान की वाणी छुड़ गई तो उन्होंने वो सब डाल दिया, तो इसलिए लड्डू चढ़ाते। बंद हुई, अभी निर्वाण हो गए तो अभी क्या करना, उसका लड्डू बिड्डू वो फेंक दे उनके ऊपर, इसलिए लड्डू चढ़ाते हैं। तो उनके लड़के ने ये बात बताई वहां, क्या हो गया, आनंद होना चाहिए था। अभी वो तो नैवेद्य के रूप में उसके जो कुछ हुआ होगा, अभी कितनी प्रथाएं क्या क्या चलती रहती है, परंतु ऐसा ये नहीं कि खाने को लाया या कहते उसको वहां पर डाल दिया था। हाँ वो भी ये तो वो तो हर त्योहार में बांटते हैं, वहां की कुछ खास उसकी कुछ आवश्यकता नहीं थी ना। इसकी बात चल रही थी, आपस में बांटना अलग बात है, भगवान को चढ़ाना बात अलग है। अब ये वो खाना वो दिवाली में वो बात अलग है, क्योंकि वो तो अलग ही उसके त्योहार के तौर पर लड्डू बनाते हैं, वो खाते हैं, उसकी बात नहीं है। भगवान को क्यों चढ़ाते उसकी बात है, वो तो नैवेद्य भी क्यों चढ़ाते हैं ऐसा है ना। अभी आप 20 पंथियों में तो कोई भी घर में मिठाई वगैरह बनती है तो भगवान के सामने रखा जाता है, जैसे अन्यमति भोग चढ़ाते वैसे पद्धति पड़ी। अभी वो दूसरों को देखा देखी पड़ी है, हाँ देखा देखी है, हिंदुओं में ऐसा होता है, इसलिए वो तो जैनियों ने भी शुरू कर दिया। अभ्यास तो है नहीं कुछ तत्व का, अच्छा लगता है नहीं हम कुछ खाएंगे नहीं, पहले भगवान को ही चढ़ाएंगे। अभी भी चलता है ना, वो आम का सीजन आता है तो पहले 24 ही तो भगवान को चढ़ती है, 24 भगवान के लिए 24। हाँ डेरा शर्मा क्या क्या होता होगा, कितना ढगला होता होगा। हाँ चलो अभी यहाँ पर देखते हैं। ऐसे जो जिसके घर में जाता है उन्होंने ऐसी प्रथाएं बनी, उनको अच्छा है ना। और फिर उसमें भी चढ़ावट लगती, चढ़ावट समझते हैं, होड़ लगती है क्या आपके आम अच्छे के, वो भगवान की तरफ लक्ष्य नहीं जाता है, वो आम किसका कैसा है वहाँ लग जाता है। फूल भी चढ़ाते हैं जो, तो भी हमने कैसा फूल लाया तुमने कैसा, अरे उसको भगवान का लक्ष्य तो कहीं से छूट जाता है, थाली में बराबर सजाए कि नहीं सजाए इस पर सारा लक्ष्य होता है। वो सब हम देख के आए सब सारा कुछ। चलता है 20 पंक्ति। अरे हम 20, देखो देखो हम भी 20 पंक्ति में से ये सब कर रहे थे, तो बचपन में सब देखा है क्या है। 24 तीर्थंकरों की 24 ही चढ़ती है। सबको नहीं देते, भगवान को चढ़ाते। वो तो दिया जाता है क्योंकि हम क्या करें। हाँ हाँ उसमें भी ऐसा होता है मालूम है आपको, जो गुरु की पूजा होती है, आपने शायद नहीं किए वो ये सारे पंच पूजा, जो पूजा में चढ़ाया हुआ अपने घर वालों को भी कौन देते, जो गुरु को जो चढ़ाया जाता है वो सब नैवेद्य रूप से घर में लोग खा लेते हैं, और भगवान को चढ़ाते वो सब अन्य लोगों को दे देते हैं। ये बहुत उसमें भी डिफरेंस है, ये पड़वाटा पुष्कर रहते थे। और फिर वो गुरु को चढ़ाया हुआ मिलता है तो अच्छा लगता है, अरे वाह नैवेद्य मिला हमको, प्रसाद मिला। वो बात अलग है। हाँ देखो आगे पढ़ते अभी अपने, नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। अभी तो सारा पूर्व नियोजित चलता है कि नहीं चलता है, पूर्व नियोजित चलता है कि नहीं चलता, उद्दिष्ट आर हो जाता है वहां पर कल्याणकों में क्या होता है। वो तो क्या क्या ख्याल में नहीं, क्योंकि जो मेरे माँ ने बताया कि यहाँ इन लोगों का ख्याल में नहीं है, परंतु जो मूल में जो पंच कल्याणक होते थे वहाँ ऐसे सारे चौके लगते थे, और जो हाँ और कहीं पर भी जो कुछ जो हाँ उद्देश्य से नहीं, वहाँ पर भी विधि में भी ऐसा करते थे, ऐसा अभी भी होता है उनके यहाँ। हो होता है, ऐसा ही होता है, क्योंकि ये तो पहले से नक्के होते, तुम्हें बोली होती है आहार दान की, तो वो उद्देश्य कहाँ हो गया, क्योंकि पैसे देने वाले ज्यादा होते हैं ना। बिल्कुल दोष है, बिल्कुल दोष है। देखो आप ऐसा कर सकते कि जो कोई किने चौके लगे कहीं वहां हो गया, अभी उसको देखकर जैसे जैसे देव भी वृष्टि करते थे ना, रत्न वृष्टि करते थे जहाँ आहार होता था, इनको करने दो ना। हाँ तो होता ही था, हाँ होते हैं, तो देव आके ही तो करते ही है, तो ऐसे धनिकों को देने दो ना, बाद में क्या है, पर तो वो पहले से अपना नाम भी जाहिर होना चाहिए, पहला जाके देना भी चाहिए, ये बातें हो रही है, क्या करें। पंडित ही कर रहे हैं। अभी हमने ये भी बोला था 16 इंद्र क्यों बनाते हैं, इंद्र तो 12 ही होते हैं, अब 16 स्वर्गों के 16 इंद्र बनाते कि नहीं बनाते, वो सारी इंद्र सभा लगती है ना। चले 100 बनाओ ना, हमारी कहाँ है अब। हाँ हमने वहाँ पूछा था, 2008 में हम मंगलायतन में गए थे दोनों प्रवचन के लिए, तो पवन जी रोज बैठते थे 6 कलाक हमारे प्रवचनों में। तो मैंने वहाँ सभा में बोला, आप 16 इंद्र क्यों बनाते हैं? तो विचार करते हैं पैसे के लिए बनाते हैं। उन्होंने कबूल किया। अभी क्या क्या बोले, बोलेंगे कभी। चौके लगे होने चाहिए, जो कुछ होना चाहिए वहाँ पर, पर आजकल चौके करते कौन है सब खुद के लिए, वहाँ तो रेडीमेड सबके होते ना। पहले के जमाने में सारे इनके अपने अपने चौके लगते थे, पंचकल्याण कोम में भी, और मुनि के लिए नहीं, वो स्वयं के लिए भी चौके लगा के खाते थे। अभी सबकी व्यवस्था एक जगह होती है ना। वो तो अलग बात है। हाँ देखो, 103 पेज एक शुदा तृषा से बात निकली। देखो ये बालचंद जी की बात की ना, गुरुमय हतु ने, ये तो हो गया था। पर परम औदारिक, हाँ वहां तक आए, मुमुक्ष और उत्तर है ना, बीच बीच में परम औदारिक, यानी शरीर ऐसा है कि परम औदारिक शरीर है, उत्तर परम औदारिक शरीर छे, बीजा केवड़ी थाय तो परम औदारिक पछी थाय, आ तो पहला परम औदारिक शरीर लईने आवे छे। भगवान तो जन्मे त्यारथी परम औदारिक, ओहो हो, केवड़ी ने एक शुदा तृषा केवी, जन्मे त्यारथी एने एक शुदा तृषा होय पण निहार न होय, आहार होय निहार न होय। हाँ केवल ज्ञान होने पर परम औदारिक हो जाते, होता है ना। हाँ सामान्य केवली, हाँ तीर्थंकरों को हाँ निहार नहीं होता है। गृहस्थ आश्रम में पण भगवान ने आहार होए, पानी होए, भगवान ने वो जो होने वाले है वो, गृहस्थ आश्रम में कोई भगवान नहीं है, पण जो हाँ आहार होए पानी होए पण निहार न होए, निहार ने मलमूत्र, मलमूत्र नहीं होता उनके। આત્માની પવિત્રતા લઈને આવ્યા છે ને, હા અરે જગત નૂટાનું છે ને, ધર્મના નામે શું થાય, વાણિયા ઉત્તર વાણિયા છે, ઝટ સહેલું મળે, સહેલું મળે, સહેલું લૂંટાઈ ગયા, શાકનો દાખલો નહોતો આપ્યો, ભીંડો અને દૂધી સાંભળ્યો હતી ને, વાણિયાનો દાખલો નથી, અધમન શાક વેચવા માટે લઈ આવ્યો હશે, હવે ખપી ગયું, એમાં 10 શેર બાકી રહ્યું, સાંજનું ટાણું પણ કોઈ કોઈ ટુવા શું કહેવાય, દૂધી ભીંડો ઘીસોડા સારા સારા વીણીને લઈ જાય ને, ઓલા થોડું થોડું રહે, પછી કોઈ વાણીઓ જરી લોભી આવ્યો હશે, જો ભાઈ 8 આના શેર અત્યાર સુધી વેચ્યું છે, આ 10 શેર છે, 4 આના શેર આપીએ છીએ, ટુઓ છે થોડો, ટુઓ સમજો છો, ડંખ ડંખ થોડું સડેલું, 5 રૂપિયાના 2.5 રૂપિયા લાવો, ભારે આ તો ઘરે જાય ત્યાં આખામાં ટુઓ એક પણ સારો ન નીકળ્યો, સોંદું લેવા ગયા ત્યાં મફતમાં, એને એવું તો સસ્તા હૈ લે આતા હૈ, તો ઉસમે સે દેખો માન લેતે હૈ ને કે 40 કિલો વાલા 40 રૂપિયા કિલો વાલા હોગા માલ, ઓર ઉસકો 20 વાલા મિલા, 20 વાલા લાયા પણ વો સારા કા સારા ફેંકના પડા, તો કિતને મેં પડા ઉસકો, પાંચ રૂપિયા એ તો હો ગયા, ભારે આ તો ઘરે જાય તો આમાં આખામાં ટુઓ એક પણ સારો ના નીકળે। વાલચંદજી, એમાં સોંધું લેવા જાય છે ત્યાં બધા સડેલા છે, क्या सस्ते में लेना जाता है? पुण्य से धर्म थाए, पुण्यति धर्म थाए ने आवा देव गुरु होए। आवा इन्हें उन्होंने समझा हुआ क्षुधा तृषा वाला रोग वाला एने मानो तो तमारो कल्याण थाए। ए बधा सोंगू लेवा जाए पण मूंगू पड़शे, काई हाथ आवशे नहीं, मिथ्या तो हाथ आवशे। बाकी ये जो इतना सब किया वो क्या, सब फोकट का धंधा है। यानी वो नहीं करते तो अच्छा था, और वो किया तो धर्म के नाम पर किया और उल्टा मान लिया। अब सुलटने के लिए जो पहला वो लिखा हुआ पहला जो कुछ रजिस्टर है वो पूरा मिटाना पड़ेगा तब सही। और कितने बार या तो अंदर जब तक वो पड़ा है तब तक नया घुसता भी नहीं अंदर। बात है ना, वो चीटी वो तो ही जाएगा, क्योंकि वो तो नमक की डली खाए मुंह में रखी है और वो शुगर यानी शक्कर की खाना चाहती है, स्वाद ही नहीं आ रहा है, कैसे आएगा? एक झटके से जान जाएगी। वो सब खोटा था, इन्होंने बहुत मेहनत की है। हाँ, कुछ सच्चा नहीं है, पहले में पहले नक्की करना। उछल के आ गए, उनका उदाहरण देते वो क्या, वो जो चना सेकते ना या वो हाँ बोलो बोलो आप ही बोलो। देखो ये क्योंकि पहले माना हुआ झूठ है, ये स्वीकार करने में बहुत तकलीफ होती है, पर अगर कोई सच्चा मार्ग चाहता है तो ये उसका पुरुषार्थ है कि पहले में पहले सच क्या है वो तो एक्सेप्ट करो। अरे इतने साल हमने किया, इतने साल के लिए इतने बड़े बड़े लोगों को हमने मान लिया, वो झूठ था? हाँ झूठ था, पहले ये तो नक्की करो। क्योंकि जिसको सत्य मार्ग अभी सुनने को मिला है, और हमें तो क्या है, अनादि से पड़े हम ऐसे ही कहीं ना कहीं ठोकर खाते खाते आए हैं, और भले इस उम्र के इतने साल चले गए कोई बात नहीं है, पर अभी तो सत्य मार्ग मिला है तो यही सत्य इतना तो नक्की करो। आप कहेंगे तो हमने इतने उम्र के 30-40 साल गंवाए, वो अरे अनंत काल गया उसके सामने 30-40 साल कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही कहीं ना कहीं गोते खाते आए, इसीलिए तो जन्म मरण करते आए हैं, और यहाँ उत्पन्न हुए पंचम काल में तो मिथ्या तो सहित ही उत्पन्न हुए हैं, और हमें इसमें से अभी सच्चा मार्ग चाहिए तो बिल्कुल समाज के लिए हमारे कुटुंब के लिए कोई नहीं। धर्म की बात आती है तो जो सत्य है वो सत्य है, भले पूरे दुनिया एक बाजू हो जाए और हमें ये मालूम है कि यही सत्य है, तो वो एक्सेप्ट करने में स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आगे ये तो अभी स्वीकार की बात है, आगे उस मार्ग पर चलना है और जो बताए उन्होंने किस तरह से अपना अनुभव करना है उसके लिए ये तो सबसे पहले में पहली कंडीशन है कि देव का स्वरूप नक्की करना, गुरु का स्वरूप नक्की करना, तत्व का स्वरूप नक्की करना है। और ये जो खोटी मान्यता है वो बिल्कुल, अगर सही हम सुनते हैं तो सही सुना तभी कहेंगे, जो खोटी मान्यता निकल जाए पूरी की पूरी तभी, नहीं तो हमने सुना नहीं सुना बराबर का है। आपके लिए तो और जरा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, हमने तो इसी संप्रदाय में जन्म लिया, यही सुनते आए हैं सच्चे देव की बात है। हाँ फिर भी कुछ रूढ़ियाँ थी गलत, वो छोड़ने में हमें इतनी तकलीफ नहीं पड़ी जितने आप लोगों को पड़ने वाली है। हमें तो पता था ना अन्य कोई रागी द्वेषी देव होते ही नहीं, बचपन से कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, हमारी स्कूल तो ब्राह्मणों की थी, कितना उसमें तो प्रेशर होता था धर्म के लिए, हमने कभी किसी के सामने अन्यमति के देवों के सामने हाथ नहीं जोड़े। वहां तो स्कूलों में भी पढ़ाते थे बहुत सारी बातें।
देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी का अर्थ क्या है समझ में आया? आपको पुरुषार्थ करना पड़ा, पुरुषार्थ करने का है ना, आपको ये पुरुषार्थ है सत्य बात का स्वीकार करें और जो हमारे पहले से चली आई हुई जो झूठी मान्यता है उसका त्याग करें, इसमें भी पुरुषार्थ लगता है और वही सच्चा पुरुषार्थ है। ये तो बिगिनिंग है, शुरुआत है।
नहीं आपकी तो बात मैं तो अच्छा समझती हूँ कि आपने तो प्रवाह के उल्टा आकर इस बात को सुनना चालू किया, जहाँ पूरा प्रवाह बह रहा है वहाँ से लौट कर आना कुछ सीधी बात नहीं है। आप सुन रही हो, सुनना चाहती हो और उसमें से विचार भी करती हो, और पहले की कुछ भूले है वो आप उत्स्फूर्त से बताते हम ऐसा सोचते थे, ये सरलता का लक्षण है। परंतु इसी में जाके आगे निर्णय तक पहुँचना चाहिए आपको। कभी कभी लगता है अरे वो उसमें क्या है जाए, वो भी ऐसा कहते थे, वो भी सच होगा, थोड़ा तो सच होगा, उसकी अच्छी बातें तो लेगी, ऐसा ही लगता है ना उसमें। तो एक नक्की करना, जहाँ एक दो चार बातें खोटी है तो वहाँ तो उनका कुछ बात सही हो ही नहीं सकती।
देखो यहाँ अपने में आने वाले ये मिलिंद्र है, सुशीला बहन है, अरविंद भाई है, वीरेश भाई है, ये सारे यहाँ आके सुधरे हुए है। पहले तो उनकी भी ऐसी ही मान्यता थी, यही तो बताने को हिचकिचा रहा है अभी, इसको बोलो बोल।
हाँ, ये यही तो अंदर से ऐसे ही लोगों को लगता है कि कोई अंदर से कुछ गलत नहीं है ऐसा। हाँ। जिसको कहते ना जिसकी होनहार है या अंदर कुछ जिसको अव्यक्त रूप से भी जिज्ञासा या कुछ बनी रहती है, उसको तो मार्ग मिलने से रहा, जरूर उसको ऐसा निमित्त मिलेगा। वो तो अंदर की पात्रता होती है ना, उसको तो मिले बिना रहेगा नहीं, होता तो उपादान से है ना, अपने उपादान से हो जाता है। तो इनको सहज रूप से निमित्त, फिर निमित्त का वो हम उपकार करेंगे, जो कुछ आदर करेंगे वो बात अलग है। अभी यहाँ बताए ना, नहीं कृतम उपकारा साधवो विस्मरन्ति, यानी वो तो ऐसा जो उपकार जिसका हुआ उसका स्मरण जरूर हो जाता है। परंतु मूल में हमें ये नक्की करना है कि मार्ग सत्य मार्ग क्या है। देखो ये पेज नंबर 104 पर आए थे हम, सेकंड पैराग्राफ, आप पीवानी इच्छा रूप दुख न होए, तीसरा भय नहीं होता ना, आलोक नो भय परलोक नो भय, ए भगवान ने होए नहीं। अब भगवान की बात क्या है, जो समय दृष्टि को भी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं, मुनियों को भी ये नहीं है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, इतना सब निर्णय करते हैं, और अभी हम देखते हैं ना, एक समय में मरा, दूसरे समय में वो देह धारण किया, अरे मृत्यु का भी भय कहाँ रहेगा। इतनी सरल बात जानते कि यहाँ अभी इस देह में है, ये देह छूटा तो दूसरा देह मिलने वाला है, उसमें डरने की बात क्या। यहाँ आँखें बंद करके खोलते हैं, उसने भी असंख्यात समय जाते हैं, और यहाँ तो देह धारण करने के लिए एक दो या तीन समय लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। यहाँ तो पता भी नहीं लोगों का ये मर गया, तब तक उसका दूसरा जन्म शुरू हो जाता है। इसमें डरने जैसी और रोने जैसी कोई बात ही नहीं है, पर क्या है उसी के हाँ हो चलता रहता है उसके पीछे। आलोक नो भय परलोक नो भय, ए भगवान ने होए नहीं, अरक्षा भय अगुप्ति भय मरण भय वेदना भय अने अकस्मात भय, एम भय सात प्रकारे छे, एथी रहित होए निर्भय भगवान आत्मदशा प्रकट थई छे। आहा, भले शरीर होए अनंती अनंती आनंदनी निर्भयता शांतिनी स्वच्छतानी प्रभुता प्रकटी छे, एने भय भय होए नहीं, क्या जन्म शूं क्या उतार ले शूं, एवो एने भय होतो नथी। अरे समय दृष्टि को भी ऐसे भय नहीं होता कि अरे मैं जीऊंगा कि नहीं, कि मरूंगा कि जल्दी मरूंगा, कि मैं और थोड़ा जीऊँ तो अच्छा है, अरे मैं मरकर कहाँ जाऊँ, ऐसा कोई उसके डर है ही नहीं, ऐसे विचार उसके संबंधी विकल्प भी नहीं होते उसके। क्रोधी पुरुषनो तीव्र परिणाम ते रोष्चे, ये भगवान ने होतो नथी। अब अन्य मतियों के भगवान में तो क्या, वो तो रोध हो गया तो उसने वो शत्रु का संहार किया, क्या क्या किया, इसलिए तो शस्त्र अस्त्र वस्त्र सभी कुछ धारण कर रहे हैं ना। क्रोधी पुरुषना तीव्र परिणाम, लाल आँख थी जाए ने, भगवान नु नाम धरावे ने लाल आँख थी जाए, एवं भगवान होय नहीं, रोष न होय। अभी उनके देव देवता देवी देवता भगवान जी बाहर निकालिए कुछ क्या क्या मालूम है, अभी किसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ये तो एक्चुअली ऐसे, हाँ यहाँ रोष लिखा है, वहाँ द्वेष लिखा है, राग और द्वेष लिखा है वहाँ पर। अब यहीं रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकाय। सप्तकनम सदा देव।